आज हम चर्चा करने वाले हैं राजा कुलशेखर के बारे में, जो आलवारों में से नंबर 7 पर हैं। कुलशेखर आलवार या कुलशेखर पेरुमाल, उनका जन्म जैसे कि यहां दिखाया गया है कलयुग के पहले शतक में हुआ। ऐसे बताया जाता है कि कलयुग की शुरुआत होकर 27वें साल में उनका जन्म हुआ, और उनका भी जन्म केरल देश में हुआ था, कोल्ली, उस समय उसको कोल्ली कहते थे, और जगह का नाम था तिरुवंजिकलम। कुलशेखर आलवार कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। ऐसे श्री संप्रदाय में जो अलग अलग आलवार हैं, वो भगवान के सामग्री के, उनके दूतों के इत्यादि अवतार माने जाते हैं। राजा कुलशेखर छेर वंश में जन्म लिए, इसलिए छेर प्रांत या छेर देश के राजा हुए, जिसको अनंत शयन या त्रावणकोर, मलयनाडु, आज केरल के नाम से ये प्रांत माना जाता है, जाना जाता है, और यहां पर वो राज करते थे। कुलशेखर इतने शक्तिशाली राजा थे कि न केवल छेर देश, परंतु चोला और पांड्य इन दोनों राज्यों के ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, और इन तीनों प्रांत के राजा थे। उनके पूर्वज, उनके जो वंश में आए, सारे राज ऋषि थे। अनंत शयन नाम के जगह में अनंत पद्मनाभ का बड़ा प्राचीन सुंदर मंदिर है, जहां पर भगवान अनंत पद्मनाभ के रूप में विराजे हैं। पद्मनाभ मतलब जिनके नाभि से पद्म या कमल पुष्प आता है, जिसमें कि ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और अनंत क्योंकि वो अनंत शेष को अपना शयन बनाए हुए हैं, उस स्थान को भी अनंत शयन कहा जाता है। आज भी ये मंदिर है, यहां पर बहुत सुंदर मंदिर है, और उस शहर के नाम भी तिरुअनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इसका नाम हो गया त्रिवेंद्रम, सारे नाम बदल गए। तो ये सब राज ऋषि थे, अनंत पद्मनाभ के बड़े अच्छे भक्त थे। अपने आप को ये राजा लोग कभी राजा नहीं मानते थे, वो अपने आप को अनंत पद्मनाभ के मंत्री मानते थे, उनके दास मानते थे, और अनंत पद्मनाभ को ही राजा मानते थे उनके राज्य का। इसीलिए हर दिन में 2 बार वो दर्शन करने आते थे, पूरा दंडवत डालते थे, भगवान की स्तुति करते थे, और प्रार्थना करने के बाद फिर अपने राज्य का रिपोर्ट दिया करते थे कि आज अब तक राज्य में क्या हुआ। ऐसे हर दिन में 2 बार कितने पीढ़ियों तक ऐसे राजा करते रहे। ये था उनका भक्ति, ये थी उनकी भक्ति भावना। वैसे मंदिरों में भी ऐसे ही किया जाता है, यहां पर भी हमारे मंदिर में हर महीने जो मंदिर का हिसाब किताब होता है वो भगवान के सामने रखा जाता है। जो भी भक्त इस विभाग का देखभाल करते हैं वो अंदर जाते हैं और सारा रिपोर्ट जो है हिसाब किताब भगवान के सामने रखते हैं, और पढ़ भी देते हैं, दिखाते हैं कि इस महीने में हमें दान इतना इतना आया, खर्चे इतने इतने हुए, और वैसे और भी अन्य कार्यक्रम इत्यादि के बारे में भी रिपोर्ट देना आवश्यक है। वो भी शुरू करना होगा कि पिछले महीने में ये कार्यक्रम हुए, ऐसे ऐसे घटनाएं हुई, और आने वाले महीने में ये हमारी योजनाएं हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो ऐसा भी हमें एक रिपोर्ट यहां तैयार करना चाहिए। ऐसे राजाओं से हमें भी प्रेरणा मिलनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए इनसे, और हर घर में भी ऐसे होना चाहिए। हर घर में भगवान को रिपोर्ट देना चाहिए, घर के निवासियों को। हमको समझना चाहिए कि हमारे घर के मालिक हैं भगवान, हम तो केवल दास हैं, और इसलिए उनकी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करने चाहिए। उनके आशीर्वाद लेकर ही, चाहे हम नया घर बना रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उनकी अनुमति लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और कार्य संपन्न होने के बाद उनको आके बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ, रिपोर्ट देना चाहिए। तो ये थी जो उनके पूर्वजों की कथा कि ऐसे कुल में, ऐसे वंश में राजा कुलशेखर का जन्म हुआ। वैसे उनके पिताजी का नाम था दृढ़व्रत, राजा दृढ़व्रत, और थे भी दृढ़व्रत, लेकिन कई सालों से उनके कोई संतान हुए नहीं थे, कोई पुत्र नहीं था, तो बड़े चिंतित थे कि अब आगे राज्य कौन संभालेगा मेरे बाद। तो उन्होंने अनंत पद्मनाभ से बहुत तीव्रता से प्रार्थना की, और भगवान नारायण की कृपा से थोड़े समय बाद उनको एक पुत्र हुआ, जो आगे चल के एक बहुत ही महान राज ऋषि होने वाले थे। वैसे इस क्षेत्र वंश के राज ऋषियों में से कुलशेखर शिरोमणि माने जाते हैं, चूड़ामणि। हालांकि सब भक्त थे, सब राज ऋषि थे, लेकिन राजा कुलशेखर बिल्कुल उनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त निकले। तो राजा दृढ़व्रत को जब पुत्र हुआ तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े लाड़ प्यार से बच्चे को बड़ा किया गया, परंतु जो शिक्षा, जो उपदेश एक राजकुमार के लिए आवश्यक है, उचित है, वो भी दिया गया, और बचपन से ही जो राजा के लिए धनुर्विद्या इत्यादि सीखना चाहिए वो भी सिखाया गया। धनुर्विद्या के साथ साथ जैसे कि क्षत्रियों के लिए आवश्यक था, शास्त्रों का ज्ञान भी दिया गया। तो देखिए, पुराने जमाने में ये हम 5000 साल पूर्व की बात कर रहे हैं कि राजाओं को ऐसे शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, न केवल अर्थव्यवस्था की, न केवल कैसे शत्रु को पराजित किया जा सकता है, न केवल धनुर्विद्या की, न केवल राजनीति की, परंतु शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाता था। चाणक्य पंडित अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि राजा को कम से कम 4 घंटे धार्मिक क्रियाओं के लिए बिताना पड़ता था। यह उन्होंने जो दिनचर्या टाइम टेबल बनाई हुई थी राजाओं के लिए, और राजा चंद्रगुप्त को उन्होंने भी इसी चक्की में से निकाला कि राजा को प्राय सोने को समय मिलता था, 3-4 घंटे मिलते थे बस, और बाकी समय प्रजा की सेवा में और फिर धार्मिक कार्यों में, शास्त्रों को सुनने में, ऐसे कार्यों में समय बिताना पड़ता था। काश हमारे आधुनिक काल के नेता भी ऐसे होते तो सामाजिक परिस्थिति कुछ अलग हो जाती आज, जो आज दुर्दशा है वैसे नहीं होती। तो ऐसे जैसे जैसे कुलशेखर उम्र बढ़ते गए, उनकी बुद्धि की वृद्धि होती गई, बड़े बुद्धिमान निकले, होशियार निकले, साथ साथ शूरवीर भी, अस्त्र शस्त्रों को चलाने भी बड़े निपुण, स्वभाव से भी बड़े सौम्य, और बड़े करुणा की भावना अपने प्रजा के प्रति रखने वाले, अपने बुजुर्गों के प्रति बड़े आदर से व्यवहार करते थे, हर दृष्टि से एक आदर्श राजा, एक आदर्श व्यक्ति। और जैसे जैसे राजा दृढ़व्रत ने देखा कि किस तरह से उनका लड़का जो है वह बड़ा होते जा रहा है, कैसे योग्य होते जा रहा है राजपद को स्वीकार करने के लिए, तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब तरुण अवस्था में पहुंचे कुलशेखर, तो राजा दृढ़व्रत ने सोचा, जैसे कि उनके पूर्वज भी सोचते थे सही समय पर, कि अभी ये सब राज्य वगैरह त्यागना पड़ेगा और मुझे अब वन में जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मेरा जीवन अब समर्पित करना चाहिए। राजाएं उस समय केवल अपने पुत्र को इस उम्र में आने की राह देखते थे कि वो अपना राज्य संभाल सके, इस योग्य हो जाए कि वो राज्य के कारोबार को संभाल सके, बस उस दिन की राह देखते थे, आसक्त नहीं रहते थे कि हम कब तक खींचते रहे किस्सा कुर्सी का, कैसे कब तक उस कुर्सी के ऊपर हम बैठे रहें आखिरी दम तक, जब तक कोई गोली से नहीं उड़ा दे हमें, या तो कोई चुनाव में हमको निकाल ना दे। खुद अपने आप से कोई नहीं जाता, या तो बीमारी, या तो मृत्यु, या तो चुनाव, या तो गोली। आजकल कलयुग की पद्धति यही है, परंतु वैदिक काल के राजा ऐसे नहीं हुआ करते थे। वो स्वेच्छा से कम उम्र में ही, कम उम्र मतलब आजकल के हिसाब के से देखा जाए तो, आजकल तो 80 90 उम्र के साल तक भी वो गद्दी में बैठना चाहते हैं, पर वहां 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ, पंचाशोर्धम वनम व्रजेत। तो इसी प्रकार से राजा दृढ़व्रत का विचार हुआ, उन्होंने कुलशेखर को राजगद्दी पर बिठाया और वानप्रस्थ लेकर वो वन में चले गए। क्योंकि कुलशेखर राजा को ऐसा अच्छा प्रशिक्षण मिला था और स्वभाव भी उनका अच्छा था, तो बड़े अच्छे राजा बने। जैसे हम पहले कह रहे थे कि न केवल चेर देश, चेरव राज्य, परंतु चोला और पांड्य देशों को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और जो भी आसपास रहने वाले राजा लोग थे वो पूरी तरह से उनके मुट्ठी में थे। साथ साथ में राज्य के अंदर जो उन्होंने व्यवस्था बनाई रखी थी वो एक आदर्श व्यवस्था थी। सभी लोग वहां पर खुश थे, संतुष्ट थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी, धार्मिकता सब जगह फैली हुई थी, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कुलशेखर राजा राज्य करते थे, सब लोग नीति के नियमों का पालन करते थे, सभी सुखी थे, शांत थे, और जो कमजोर थे वो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे, क्योंकि जो शक्तिशाली राजा उनके संरक्षण के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे, और जो ज्यादा शक्तिशाली थे वो अपने आप को कमजोर मानते थे, क्योंकि कभी भी अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि राजा की कड़ी नजर जो है सबके ऊपर रहती, सारे व्यवस्था के ऊपर, कि कौन ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, सब लोग ठीक ठाक रहे कि नहीं है, कोई कानून को तोड़ तो नहीं रहा है, कोई पाप तो नहीं कर रहा है। तो राजा का काम जो है वो बहुत कठिन वास्तव में है, लेकिन उस समय भी लोग जो राजा होते थे व्यक्तिगत रूप से प्रजा का देखभाल करते थे, और कभी कभी प्रजा में मिलके भी वेश बदल के प्रजा में मिलजुल कर रहते थे, ताकि लोग उनको पहचान नहीं पाए और वो वास्तव में समझ लें कि प्रजा की क्या दशा है। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजा कुलशेखर एक बड़े सफल, एक यशस्वी राजा थे, प्रजा उनको भी बहुत पसंद करती थी, परंतु अपने राज कारोबार में पूरी तरह से मग्न हो चुके थे और आध्यात्मिक जीवन के लिए ज्यादा समय उनको नहीं था। लेकिन धीरे धीरे से भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर आने लगी और एक बड़े अद्भुत घटना से उनके जीवन में एक मोड़ आया, एक परिवर्तन हुआ। ऐसे जो मोड़ आते हैं जीवन में, भौतिक जीवन में भी आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं भौतिक मोड़ आ सकते हैं, किसी व्यापारी को अचानक इतना नुकसान हो सकता है कि वो सड़क पे आ सकता है, एक मोड़ आ गया जीवन में। किसी को अचानक ऐसे मोड़ आ सकता है कि एक साधारण आदमी से अचानक वो मंत्री बन गया, ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं भौतिक जीवन में। लेकिन भौतिक जीवन के मोड़ जो है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति के वास्तविक जीवन के ऊपर, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब मोड़ आते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मृगारी शिकारी के जीवन में आया, वो आगे चल के एक बड़ा संत बन गया। रत्नाकर डाकू के जीवन में आ गया, वो आगे चल के वाल्मीकि मुनि बने। नलकूवर मणिग्रीव के जीवन में ऐसे आया। हर एक ऋषि मुनि जो संत बड़े भक्त हुए हैं, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं तो एक ऐसे मोड़ आया जिसमें कि भगवान कृष्ण की कृपा किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन में आई हुई होगी। तो ठीक उसी तरह से कुलशेखर राजा के जीवन में भी एक मोड़ आया। वैसे ये तो हैं कौस्तुभ मणि के अवतार, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से कोई निमित्त चाहिए उनके भक्ति के प्राकट्य के लिए, बाहरी प्राकट्य के लिए। एक दिन ऐसे हुआ जब राजा कुलशेखर रात की गहरी नींद में थे तो उनके स्वप्न में अचानक उनको एक बहुत ही साफ स्पष्ट एक तेजस्वी दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण का। मानो कि भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, ऐसा नहीं लगा कि यह स्वप्न है। साक्षात दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण का, और यह दर्शन का प्रभाव इतना था कि उसी समय वो बिल्कुल ध्यान में मग्न होकर नींद से उठ ही नहीं पाए। आप तो जानते हैं कि पुराने जमाने में राजाओं को जगाने के लिए सुबह सूतगण, मागध, वंदी और फिर संगीतकार भी आया करते थे, साथ साथ मंत्री लोग भी आते थे, और जो संगीतकार थे वो बहुत मधुर वाद्य बजाते थे, गीत गाते थे। जो सूत, मागध इत्यादि हैं वो राजा का गुणगान करते थे, जैसे रामायण में भी महाराज दशरथ के संदर्भ में भी वर्णन आता है। तो ऐसे हर दिन सुबह होता था, एक निर्धारित समय होता था जब राजा नींद से जागते थे, और ठीक उस समय ये लोग सब वहां पर उपस्थित हो जाते थे उनके कमरे के बाहर। लेकिन इस दिन सुबह को जब ये सब सूत, मागध, वंदी, संगीतकार, मंत्री सब लोग आए, काफी समय तक राजा की कोई आवाज आई नहीं। वैसे हर रोज राजा कोई शब्द कहते थे, कुछ हाँ मैंने सुन लिया, उठता हूं, कुछ ना कुछ कहते थे जिससे कि उनको पता चले कि राजा उठ गए हैं, फिर ये लोग चले जाते थे। लेकिन इस दिन ऐसे कोई आवाज नहीं आया अंदर से, तो इनको चिंता हुई कि क्या बात है। और हालांकि इनकी इच्छा नहीं थी कि बिना राजा की अनुमति से वो अंदर जाएं, लेकिन फिर भी वो अंदर चले गए और अंदर जाकर उन्होंने राजा को जगाया कि क्या बात है महाराज, क्या कोई परेशानी है, कोई बीमारी है। तो फिर राजा कुलशेखर ने उनको सारे दृश्य के बारे में, सारे सपने के बारे में, केवल सपना नहीं था, क्योंकि सपना हम सोचते हैं कि सपना मतलब कोई वहम है, ये सपना नहीं था, साक्षात भगवान का दृश्य था। केवल उनको सुषुप्ति की अवस्था में आई, नींद की अवस्था में आई। वास्तव में ये जो हमारे अलग अलग चेतना के स्तर होते हैं, जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन में हम करते आए हैं, जैसे कि जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तो शरीर से संबंधित है, परंतु एक और चौथा स्तर है चेतना का, जिसको समाधि कहते हैं, जो आत्मा का स्तर है। और जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में रहता है, या इसको तुरिया भी बोलते हैं, तो उस समय शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आदमी जागृत हो, स्वप्न अवस्था में हो, या सुषुप्ति में हो, गहरी नींद में हो। तो भगवान का दर्शन अगर होना है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, क्योंकि ये आत्मा से संबंधित है। और भगवान स्वप्न अवस्था में भी आ सकते हैं, सुषुप्ति की अवस्था में भी आ सकते हैं। तो राजा कुलशेखर ने अपने इस बड़े अद्भुत अनुभव के बारे में मंत्रियों को बताया, अपने हृदय की बात व्यक्त की सबके सामने। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, और ये राजा कुलशेखर के जीवन में एक मोड़ बन गया। इस दिन के बाद राजा कुलशेखर वो नहीं रहे जो कि वो पहले थे। इस दिन के बाद उनको एक प्रकार की निराशक्ति उत्पन्न हो गई मन में अपने राज्य के प्रति, और राज कारोबार संभालने की उतनी आशा नहीं रही उनके मन में, और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बड़ी तीव्र होती गई उनके मन में। साथ साथ उन्होंने भक्ति में जैसे ही जोर देना शुरू कर दिया, ज्यादा समय बिताना शुरू किया, वैसे वैसे उन्होंने राज्य की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अपने मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा सौंप दिया, ताकि वो ज्यादा मुक्त हो जाएं भगवान की भक्ति करने के लिए। इस ठीक इसी समय ऐसे श्री संप्रदाय में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके दूत विश्वक्सेन से कहा कि जाके पंच संस्कार दीक्षा दे दो राजा कुलशेखर को। गौड़ी वैष्णव सिद्धांत परंपरा में भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, हम पंच संस्कार स्वीकार करते हैं, जैसे मुद्रा, नाम, मंत्र इत्यादि, कंठीमाला, तिलक वगैरह। तो और इस दीक्षा के बाद राजा कुलशेखर दीक्षित हुए। दीक्षित मतलब क्या, कि उनको इस धर्म के गहरे सिद्धांतों का पूरा ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया। और फिर उस दिन के बाद उनके स्वभाव में ऐसे परिवर्तन आ गया कि उनकी सारी दृष्टि ही बदल गई। दुनिया को देखने की दृष्टि इतनी बदल गई कि एक प्रकार की घृणा जैसे उनके मन में उत्पन्न हो गई सारे संसारी चीजों के प्रति। और जब वो इस जगत के संसारी व्यक्तियों की ओर देखते थे, भौतिकवादी व्यक्तियों को देखते थे, तो हमेशा शोक करते थे कि ये लोग तो पागल हो गए, ऐसे पागल लोगों के बीच में मैं कहां हूं। कैसे पागल हो गए हैं? काम से पागल, लोभ से पागल, ईर्ष्या से पागल, अहंकार से पागल, क्रोध से पागल, ये सब पागल लोग हैं। मैं पागलों के बीच में बैठा हूं, ये उनके बीच में एक तीव्रता से ये एक बात बैठ गई दिमाग में, क्योंकि इनको भगवान में कोई रुचि नहीं है। इन लोगों ने शरीर को ही आत्मा मान लिया है और उनको केवल अपने शरीर का ज्ञान है, शरीर को कैसे तृप्त किया जाए, कैसे भोग किया जाए, बस इनको यही चीजें मालूम है। और किस तरह से आसानी से ये लोग पाप करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, बस ज्यादा प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा कुछ वातावरण बदल गया और पाप में लग जाते हैं। फिर अपने निजी परिस्थिति को उन्होंने देखा, उसके ऊपर विचार किया, देखा कि ये सब ठाठ राजा का और ये सब शानदार महल और ये हाथी घोड़े और हाथी के ऊपर सवार होकर लोगों के राजा के रूप में सबके बीच में जाना, फिर लोग महाराज महाराज कहें, आगे पीछे मंत्री लोग नौकर चाकर घूमे फिरें, ये सब रानियां और ये सब धन दौलत, ये सब क्या है, इस सबको वो तुच्छ समझने लगे। न केवल तुच्छ, लेकिन इन चीजों से, इस राजपद से भी वो घृणा करने लगे। यहां तक कि सोचने लगे कि मैं अग्नि में प्रवेश करना पसंद करूंगा, लेकिन ये राजपद मुझे नहीं चाहिए। और न केवल उनके मन में एक ऐसी विरक्ति या वैराग्य की भावना उत्पन्न होती जा रही थी, परंतु इसके साथ साथ भगवत भावना बहुत तीव्र होती जा रही थी। वास्तव में भगवत भावना जितनी बढ़ेगी व्यक्ति की, स्वाभाविक रूप से उसके मन में विरक्ति की भावना भी बढ़ जाएगी। भक्त को विरक्ति के लिए, वैराग्य के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्य आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहितुकम। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, उसको ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है, अलग से उसको इन चीजों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भक्ति क्योंकि श्रेष्ठ है और वैराग्य निम्न श्रेणी का है, तो जब हम किसी श्रेष्ठ चीज को प्राप्त करते हैं, तो उस प्राप्ति में निम्न श्रेणी की चीजें जो है खुद ब खुद प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई दसवीं कक्षा को पास कर चुका है, तो हमें समझना चाहिए कि उसने पांचवीं छठी सातवीं कक्षा भी पास कर ली है। अगर कोई बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति करता है, तो हमें जान लेना चाहिए कि उसके मन में भी ऐसे ही वैराग्य की भावना स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाएगी। और ऐसे जब वो मन में सोचते थे, उनको विभीषण का उदाहरण याद आया और सोचने लगे कि मुझे भी विभीषण की तरह मेरे राज्य को त्यागना है। रामायण तो आप सबने सुना है, आप जानते हैं कि कैसे अपने राज्य को, अपने भाई को, अपने सबको, सगे संबंधियों को छोड़कर विभीषण राम के शरण में आए थे। रामायण में दो अलग अलग जगह वाल्मीकि मुनि विभीषण के मन की बात बता रहे हैं। परित्यक्ता मया लंका मित्राणि च धनानि च त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश राघवम शरणम गतः। मैं इस लंका में जो भी जितने भी मेरे मित्र इत्यादि हैं, मैं त्यागना चाहता हूं, मेरे धन को त्यागना चाहता हूं, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को त्याग कर मैं राघव श्री रामचंद्र के शरण में आना चाहता हूं। और उन्होंने ऐसे किया भी, और फिर विभीषण को अपना एक आदर्श समझकर वो सोच रहे थे, मैं कभी मेरे इस लंका को त्याग दूं और श्रीरंगम चले जाऊं, वो धाम जहां की भगवान रंगनाथ जी के रूप में विराजे हैं और जहां के इतने सारे बड़ी संख्या में भक्त हैं, वैष्णव हैं, मैं उन वैष्णवों की सेवा कब करूंगा, मैं उनका गुलाम, उनका दास कब बन जाऊंगा, काश कब वो दिन आएगा जब मैं ये सब छोड़कर, ये झंझट छोड़कर मैं वहां रंगनाथ जी के शरण में चले जाऊंगा। ऐसी भावना उनके मन में थी। राजा कुलशेखर की विशेषता ये थी कि जितना वो भगवान के शरण में जाने की इच्छा रखते थे, उससे कई गुना ज्यादा वो भगवान के भक्तों के आश्रय लेना चाहते थे। यह श्री संप्रदाय की एक विशेषता है, क्योंकि श्री संप्रदाय में खास करके अनेक सारे वैष्णव संप्रदायों में, लेकिन विशेष करके श्री संप्रदाय में वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। बल्कि श्री संप्रदाय में यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े श्रद्धा से किसी एक वैष्णव की सेवा करे, निष्कपट भावना से, श्रद्धा से, तो उसको वो लाभ मिलेगा जो कि भगवान श्री हरि को हजारों हजारों वर्ष सेवा करने से प्राप्त हो सकता है। तो राजा कुलशेखर के मन में भी ये भावना थी, भक्ति श्रद्धा भावना थी भक्तों के प्रति। उनकी जो कविताएं हैं जो उन्होंने बाद में लिखी, जिनकी चर्चा हम अगले एकादशी को करेंगे कभी, उसमें भी कई बार ये देखा जाता है कि वो किसी भगवान के एक रूप के का गुणगान करते थे, जैसे रंगनाथ जी हो या वेंकटाचलपति हो तिरुपति में, और ऐसे काफी लंबे समय तक गुणगान करके अंत तक जब पहुंचते थे, शायद जो उस कविता को पढ़ रहे हैं सोचेंगे कि अब वो बोलेंगे कि मैं इस भगवान के शरण में जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं बोलते थे। भगवान का गुणगान करने के बाद फिर कहते थे कि इस भगवान के भक्तों के शरण में मैं जाना चाहता हूं। हमेशा उनकी कविताओं का अंत ऐसे होता है। तो इस समय वो ऐसे दुखद अवस्था में सोचा करते थे, कब इस जगह को छोड़कर मैं जाऊंगा, कब मैं पहुंच जाऊंगा, और ये हर दिन उनकी चाह रहती थी। भारी भारी सांस लेकर हाय हाय करते हुए वो कहते थे, अरे कब मैं छोड़कर चले जा पाऊंगा, कब मैं जाऊंगा, कब श्रीरंग पहुंचूंगा, कब वहां रंगनाथ जी का दर्शन करूंगा, कब इनके लिए फूलों की माला बनाऊंगा, कब मैं वहां श्री वैष्णव की सेवा करूंगा, कब वो दिन आएगा मेरा, इस प्रकार से वो सोचा करते थे। ये जो लालसा है, ये लालसा ही हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम मूल्यम अपि एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति के रस का स्वाद लेना है, तो उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी जहां से भी उपलब्ध हो वहां से उसे वो खरीद ले। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये रस बिक रहा है, जहां से कि हम उसको खरीद सकते हैं? मुसीबत है, परेशानी है, कहीं भी दुकान में नहीं मिलता। और कीमत क्या है, कितने पैसे लगेंगे, क्या देना पड़ेगा इसके बदले में? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। हरे कृष्णा। आप सब अंधेरे में बैठे हैं, ठीक है ना, घबरा नहीं रहे ना कोई? कम से कम अभी कोई सोएगा नहीं, क्योंकि अंधेरा भी है, लेकिन बादलों के गर्जना से, गड़गड़ाहट से शायद कोई सोएंगे नहीं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। लौल्यम लालसा, लोभ, जब तक व्यक्ति के अंदर भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान की किसी अमुक प्रकार की सेवा के लिए लोभ उत्पन्न नहीं होता, वो इस रस को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, भले वो कोटि कोटि जन्मों तक पुण्य करते रहे, लेकिन उसको वो रस नहीं मिलेगा। तो ये जो लालसा है, जो कुलशेखर राजा से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, इससे प्रेरणा हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम भी अपने घरों में रहते हुए हम भी वैसी भावना रख सकते हैं, कब हम राधा गोकुलानंद का दर्शन करेंगे, कब हम आएंगे, कब हम आ पाएंगे, कब उनकी सेवा कर पाएंगे, कब कबे हबे शहीदी नमार वैष्णव, हमारे कितने सारे भजन ऐसे हैं। इसको लालसामयी प्रार्थना कहते हैं। लालसामयी मतलब भक्ति के किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक लोभ रखना। तो राजा कुलशेखर की प्रार्थना यही थी, उनका लोभ यही था कि मैं श्रीरंगम में जाके वहां पे रहूं। और सब जगह बात फैल गई, क्योंकि आखिर राजा जो बोलते थे वो केवल गुप्त रूप में नहीं बोलते थे, जिसके भी सामने, जो भी सामने आया उसके सामने बोल डालते थे, कब मैं ये छोड़ पाऊंगा, कब मैं श्रीरंगम जा पाऊंगा। तो के सारे राज्य में बात फैल गई कि राजा की मन की स्थिति क्या है, और राजा पागल हो गए भगवान के पीछे, और वे हर दिन राह देखते हैं कि अब मैं चले जाऊं, अब मैं चले जाऊं। इसलिए इस घटना के बारे में सुंदर श्लोक है कि घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने तम हम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। यस्य नगरे, जिनके नगर में घुष्यते घोषणा होती थी रोज, मतलब वो अफवाह फैलती थी रोज, क्या है, रंग यात्रा दिने दिने, हर दिन अफवाह होता था, आज राजा जाएंगे श्रीरंगम, आज राजा सब कुछ छोड़कर जाएंगे, आज जाने वाले हैं, आज जाने वाले हैं, हर रोज की बात थी ये। उस जमाने में तो अखबार नहीं हुआ करते थे, लेकिन बोली से बातें फैल जाती थी, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, और ऐसे अफवाहें फैलती थी कि अरे आज तो निश्चित जाने वाले, हमने सुना है, हमने देखा है, उस व्यक्ति ने कहा कि आज तो राजा ने ठान लिया है कि वो जाने ही वाले हैं, और सारी प्रजा सदैव बेचैन रहती थी, क्योंकि प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी राजा कुलशेखर से, और हर दिन एक प्रकार की धमकी जैसे रहती थी, अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा, तो हर रोज का ही अफवाह था कि आज जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। तो कितने सुंदर ढंग से यहां इस चीज को बताया हुआ है, घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने। और फिर बोलते हैं कि ऐसे राजानम कुलशेखरम, उनके लिए तम अहम शिरसा वंदे, ऐसे राजा के चरण कमलों में मैं मेरा सिर रखना चाहता हूं, वंदना करता हूं, नमन करता हूं ऐसे राजा कुलशेखर को। न केवल वो ऐसी इच्छा श्रीरंगम के प्रति रखते, जब उनका भाव बदल जाता तो कभी कभी तिरुपति के बारे में सोचते, जहां की, और सोचते कि यहां वेंकट अचलपति निवास करते हैं, वेंकट अचलपति, वेंकट, वेंकट मतलब क्या है किसी को पता है, वेंकट शब्द का मतलब क्या है, पापों का नाश करना, जो पापों को नष्ट करते हैं वो है वेंकट। तो वेंकट रमण, वेंकट रमण गोविंदा बोलते हैं ना, जब जाता है गोविंदा तिरुपति में बोलते हैं ना, वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। तो यह वेंकट अचल, अचल मतलब पर्वत से कहते हैं, पर्वत जो चलता नहीं है, वेंकटाचल पति तो उस स्थान के पति, तो बालाजी और वेंकटेश्वर, इस प्रकार से कई नाम है उनके। तो ऐसे राजा कुलशेखर सोचते थे कि मैं वहां जाना चाहता हूं, थोड़े समय के लिए श्रीरंगम भूल जाते, अब तिरुपति छा जाता उनके मन के ऊपर, कब वो दिन आएगा जब मैं तिरुपति में जाके निवास करूंगा, वेंकटाचलपति वहां पर विराजे हैं, वहां जहां की पुष्करणी है जो कि बहुत पावन है, वहां जिस स्थान में न केवल मनुष्य लेकिन देवी देवता भी आकर वहां पे भगवान की आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मैं वहां जाकर एक वनस्पति भी बनना चाहता हूं, वनस्पति की बात दूर है, एक कीड़ा भी बनने के लिए मुझे कोई विरोध नहीं है, बल्कि एक पत्थर भी बन सकता हूं, वहां धूलि की एक रज भी मैं बनने के लिए तैयार हूं। तो थोड़े समय के लिए ये भाव उनके ऊपर छा जाता, हाय हाय मैं अब जाऊंगा तिरुपति, जाऊंगा तिरुपति, जाऊंगा या कब छोड़कर चले जाऊं, कब छोड़कर चले जाऊं, और भारी सांस लेकर बोलना राज दरबार में बैठे हुए, भेदभाव नहीं करते थे कि उनके पास में कौन बैठा हुआ है, मंत्री हो, प्रजा हो, कोई भी हो, भाव विभोर होकर ऐसी भारी सांस ले लेकर दिन भर ऐसे ही करते थे, और फिर तिरुपति की बात भूल गए और किसी तीर्थ स्थान की बात आ जाती तो वहां उस तीर्थ स्थान के बारे में ऐसे ही सोचते रहते, और फिर और एक तीर्थ स्थान। इस प्रकार से उनका मन सदैव ऐसे भगवान के प्राप्ति के लालसा में लगा हुआ रहता, बिल्कुल ध्यान उनका राज्य पे नहीं था, और इस प्रकार से उन्होंने इतनी रुचि जागृत की भगवत भक्ति में कि जितने भी सारे वैष्णव थे, भक्त थे, शास्त्रों के पंडित थे, उनको बुलाया राज्य में, और रोज उनके दरबार में घंटों तक शास्त्रों का पाठ हुआ करता था, कोई आकर शास्त्रों का पठन करते थे और फिर उसके ऊपर व्याख्या करते थे, सुनाते थे, टीका करते थे, और राजा कुलशेखर ऐसे कथाओं में पूरी तरह से मग्न रहते। और कुछ उनको मालूम ही नहीं था, सारा काम मंत्रियों को उन्होंने सौंप दिया था। इस प्रकार से समय बीतता गया और जो भी वो सुनते थे ऐसे सत्संग में, उनसे इस सागर से उन्होंने कई अच्छे रत्न निकाले और इन रत्नों से उन्होंने एक सुंदर माला बनाई। वो माला का नाम क्या है? मुकुंद माला, मुकुंदस्य माला, मुकुंद के लिए एक माला, मुकुंद माला स्तोत्र, सुंदर स्तोत्र बनाए। कई ऐसे कहते हैं कि उन्होंने यह नहीं बनाया, श्रीरंगम जाने के बाद जब वानप्रस्थ लिया उन्होंने तब उन्होंने बनाए, लेकिन खैर तो ऐसे पाठ चलता रहता था। मानो कि आजकल के आधुनिक समय के हिसाब से देखा जाए कि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में हर रोज भक्तों को बुला के घंटों घंटों कथा करता रहे और ऑफिस का काम साइड में रह जाए, ठीक ऐसी बात हुई राजा कुलशेखर की। और जितने सारे ग्रंथ थे जिनका पाठ उनके दरबार में हुआ करता था, इनसे सबसे प्रिय रामायण था राजा कुलशेखर के लिए, और रोज रामायण सुना करते थे। और रामायण जब सुनते थे तो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि कोई उनको वश में नहीं कर सकता था, कोई उनको संभाल नहीं सकता था, और ऐसे व्यवहार करते थे, ऐसे बोलते थे कि मानो कोई व्यक्ति पागल हो गया है, इतना भाव उनका तीव्र हो जाता था। और सारे मंत्री वगैरह सब बड़े चिंतित थे, हैरान हो गए थे कि क्या किया जाए, राजा को इस बीमारी से कैसे मुक्त किया जाए, क्योंकि मंत्री लोग जो थे वो भक्त नहीं थे तो इसको बीमारी समझते थे। और रामायण की कथा चलते चलते प्रसंग ये आया कि जब श्री रामचंद्र सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ में दंडकारण्य में आए हुए हैं और जनस्थान नाम के जगह में पहुंच गए हैं, और यहां पर शूर्पणखा से उनकी मुलाकात होती है। ये कथा तो आप सब जानते हैं, शूर्पणखा ने पहले श्री राम के सामने और फिर श्री लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, दोनों ने इनकार किया, मजाक उड़ाया, शूर्पणखा ने सीता देवी के ऊपर आक्रमण किया, लक्ष्मण ने अपने तलवार से शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए, और शूर्पणखा जो है वो दौड़ते हुए अपने भाई खर और दूषण भाइयों के पास चली गई जो कि वहां पर निवास करते थे। शूर्पणखा राक्षसी थी और ये खर और दूषण ये भी बहुत भयानक राक्षस थे, और उनके साथ में कई ऐसे हजारों की संख्या में बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षस रहा करते थे। तो जब खर और दूषण तक खबर पहुंची, उन्होंने दो चार राक्षसों को भेज दिया, श्री राम ने उनको आसानी से मार दिया। तब खर दूषण को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, वहां पर 14,000 राक्षस निवास करते थे और एक से बढ़कर एक शक्तिशाली, उन सबको लेकर वो युद्ध करने के लिए श्री राम के सामने चले आए। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता देवी की रक्षा करो, वहां पीछे गुफे में सीता देवी को बिठाओ, तुम गुफे के सामने वहां पर पहरा दे दो, कोई खतरा न पहुंचे, कोई धोखा न हो, कोई हिंसा न हो जाए सीता देवी के ऊपर, कोई कष्ट न हो, तुम बिल्कुल वहां से हिलना नहीं, मैं इन 14,000 राक्षसों को अकेले निपट लूंगा। जब ये दृश्य ये परिस्थिति हुई तो देवलोक के निवासी सारे देवी देवता गण, साथ साथ में सिद्ध लोक, चारण लोक, गंधर्व लोक के निवासी भी सब आकर देख रहे थे, अपने अपने विमानों में स्थित थे आसमान में, ऐसा वाल्मीकि मुनि रामायण में वर्णन करते हैं, और अपने अपने विमानों में स्थित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। और न केवल इन लोकों से लेकिन इनसे भी ऊपर जो लोक हैं, जैसे महरलोक जनलोक हैं, जहां पर ऋषि ब्राह्मण निवास करते हैं, बड़ी तपस्या में स्थित रहते हैं, वो भी सब अपने अपने वाहनों में आए और वो सब देख रहे थे और सोच लगे कि हम देखना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि श्री राम इन राक्षसों की हत्या ऐसे करें जैसे कि पूर्व काल में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से असुरों का वध किया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये 14,000 राक्षस हैं और श्री राम अकेले हैं तो उनके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, आपस में क्या चर्चा कर रहे थे,
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम भीमकर्मणाम एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। देखिए कितनी सुंदर बात है, वो बोल रहे हैं चतुर्दश सहस्राणी, चतुर्दश 14, सहस्राणी मतलब हजार, तो 14,000 रक्षसाम, ये राक्षस लोग हैं, भीमकर्मणाम, भीमकर्मणाम मतलब बहुत शक्तिशाली और बहुत सारे अद्भुत कार्य संपन्न करने वाले ऐसे राक्षस 14,000 हैं। और एकश्च रामो, रामः, और राम केवल एक है, अकेले हैं, धर्मात्मा, धर्मपरायण ये राम अकेले हैं। कथम युद्धम भविष्यति, ऐसा युद्ध कैसे हो सकता है, ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि ये सब गंधर्व सिद्ध चारण देवलोक ब्राह्मण ऋषि आपस में बोल रहे थे कि ये कैसे हो सकेगा, श्री राम अकेले हैं और ये 14,000 राक्षस हैं, कैसे अकेले श्री राम युद्ध करेंगे इनके साथ में। जब ये प्रसंग इस वाक्य तक, इस श्लोक तक कथा पहुंची तो राजा कुलशेखर अपने आप को सहन नहीं कर पाए, बिल्कुल भाव विभोर हो गए, उठे और आग बबूले हो गए क्रोध से, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे श्री राम अकेले हैं। उन्होंने उनके छोटे भाई लक्ष्मण देव से कहा है कि माता सीता की रक्षा करो, वहां अकेले में उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और वो अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, हालांकि उनके पास शंख है, गदा है, चक्र है, सब कुछ है, फिर भी हम जैसे भक्त भी हैं, और जिनके पास भी तीर है, तलवार है, सब कुछ है, तो उठे और अपने सारे सेनापतियों से कहो चलो तैयार हो जाओ, श्री राम अकेले हैं, हमें वहां जनस्थान में जाना होगा, तैयारी करो। मंत्री लोग कर रहे हैं क्या, मंत्रियों को चुप करा दिया, सारे सेना तैयार हो गई और बड़े धूमधाम से बैंड बाजे से सेना निकल पड़ी जनस्थान की ओर, और अपने युद्ध के भाव में आकर वो ललकार रहे थे उन राक्षसों को, डरो नहीं, मैं आ रहा हूं, सबको तुमको सिखाऊंगा सबक। तो जैसे याद सेना निकल पड़ी, मंत्री लोग कुछ कर नहीं पाए, आपस में सब बातचीत करें क्या करें क्या करें, हलचल पैदा हो गई वहां पर, सारे राज्य में सब खबर फैल गई क्या हो रहा है। फिर एक तरकीब सूची उनको, उन्होंने एक एडवांस पार्टी को भेज दिया सैनिकों की, मतलब सेना के थोड़े सैनिकों को बुलाया जो विश्वसु थे बड़े, और उनको कहा कि जल्दी से तेज घोड़ों से आगे चले जाओ, आगे जाके जिस रास्ते से हमारे राजा जा रहे हैं उस रास्ते में फिर से मोड़ के आना, और जब तुम उल्टी दशा से आओगे, राजा जनस्थान की ओर जा रहे होंगे, उनको रास्ते में मिलकर बताना कि हम खुशखबरी लाए हैं। क्या खुशखबरी लाए हैं? कि श्री राम विजयी हो गए, श्री राम ने 14,000 राक्षसों का वध किया है, हम उनका साथ देकर आए हैं, अब श्री राम ठीक ठाक हैं और सीता देवी उनके पास में खड़ी हैं, दोनों सीता राम बड़े प्रसन्न हैं, तो जाओ जल्दी से ऐसा करो। तो जैसा उनको आदेश मिला, ये थोड़े से सैनिक तेजी से निकल पड़े आगे, फिर घूमे और वापस राज्य की ओर आए। उधर धुआंधार भाव में राजा कुलशेखर सेना को लेकर जा रहे थे, तलवार को, धनुष, बाण सब लेकर हाथ में। जैसे ही अपने ही सैनिकों को आते हुए देखा, पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया श्री राम विजयी हो गए, सारे राक्षसों का वध हो गया, और हम भी, हमने इसका दर्शन किया साक्षात, अब सीता और राम एक हो गए, दोनों प्रसन्न है। तो फिर राजा कुलशेखर ने सुना, बहुत प्रसन्न हो गए, अच्छा ऐसी बात है, तब जो है उनका भाव बदल गया, ठीक है चलो चलो अभी राज्य वापस चल। ये हर रोज कथा होती थी, और वैसे और अगली बार भी हम सुनेंगे राजा कुलशेखर के बारे में, लेकिन ऐसी जब भी कोई कथा आती थी रामायण में, कोई खुशखबरी वगैरह, तो एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था सारे राज्य में, जैसे जो प्रसंग चल रहा है कथा में, दरबार के अंदर कोई अच्छी बात आई, जहां राम को कोई अच्छे मित्र मिल गए, जैसे सुग्रीव मिल गए, अब उनकी पार्टी हो गई, या कोई ऐसे खुशखबरी हो गई, सारा धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था सारे राजधानी में। और उनके महल के जो मंदिर में श्री रामचंद्र सीताराम की मूर्ति थी, उनको शोभा यात्रा में बाहर निकाला जाता था, और ऐसे धूमधाम से मनाया जाता था, कीर्तन पार्टी निकलते थे और सब जगह फिर लोग आके शहर में राजधानी में भोग चढ़ाते थे, कोई फूल अर्पण करते थे, सब जगह खुशी की घोषणाएं होती थी कि अभी ये प्रसंग चल रहा, रामायण, राम ने ऐसे किया, राम ने वैसे किया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी में क्या वातावरण हुआ होगा वहां, केवल इसके बारे में ही लोग बातचीत करते थे, कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या किसकी थी? केवल मंत्रियों की समस्या थी कि ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। तो उसी प्रकार से मंदिरों में भी, हमारे समाज में भी, जहां भी हो, अगर सारे लोग केवल कृष्ण कथा में, राम कथा में मग्न रहें, तो समस्या कहां से आएंगे? समस्याओं को कोई संभावना ही नहीं है। जैसे समस्या आएंगे वो दूर ही भाग जाएंगे। और उसके बाद फिर वैष्णव भोज हुआ करता था, हजारों की संख्या में लोगों को प्रसाद बांटा जाता था, फिर सबको दान देते थे, और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से ऐसे उत्सव मनाया जाता था। और ऐसे समय बीतता गया। तो अभी काफी समय हो गया, 8:15 हो गया, अभी और भी कार्यक्रम है, अभी बच्चों के भी और बड़ों के भी थोड़े कार्यक्रम है, नाटक भजन वगैरह है, तो इसलिए हम अभी इस कथा को यहां समाप्त करते हैं। अगली बार और ऐसे सुंदर कई कथाएं हैं, आप सुनना चाहेंगे राजा कुलशेखर के?
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम राम